चलिए अब आगे थोड़ी सी सजदों की बात करें। लव सजदे के साथ ही बहुत एक खूबसूरती का तसव्वुर आता है। सूरत अलक आयत 19, 19 नंबर आयत, वस्जुद वक्तरिब, और सजदा करो और करीब हो। किसके किसका दिल करता है अल्लाह का कुर्ब पाने को, सच बताएं? अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसका दी बेस्ट वे। अच्छा मैं एक सवाल करती हूँ, नबी सल्लम का कुर्ब पाने के लिए भी सजदा, इसकी भी कोई दलील है? एक शख्स था, उसने नबी सल्लम से कहा कि अल्लाह के नबी, मैं जन्नत में आपका साथ चाहता हूँ, मुराफतका फिल जन्ना, तो आप मेरे लिए दुआ करें। आपने कहा मैं तुम्हारे लिए दुआ करूँगा, पर तुम मेरी दुआ की कबूलियत के लिए फाइनी अला कसरत सजूद, मेरी मदद करो सजदों की कसरत से। जो नफिल ज़्यादा पढ़ेगा यानी जो अल्लाह का कुर्ब पाएगा, अल्लाह ताला नबी का जन्नत में उसको साथ भी देंगे। ठीक है, सजदों में हम चार पांच किस्म के सजदे देखेंगे। सबसे पहले है सजदा शुक्र, इसको ज़रा सा समझिएगा। खुशी के मौके पे कोई नेमत हासिल हो, मिलती है ना नेमतें, कौन सा वक्त है? मुझे तो लगता है मैं हर वक्त ही सजदों में रहना पड़ेगा अब तो। और इसी तरह किसी मुसीबत और तकलीफ़ के छुटकारे के मौके पे सजदाए शुक्र करना अल्लाह के नबी से साबित है। दो दलाइल नोट कर लीजिए, एक है मुस्नद अहमद 1664, हकीम में भी मौजूद है 550। अब्दुलरहमान बिन औफ कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने सजदा की और लंबा सजदा किया, फिर सर उठाकर फरमाया, बेशक जिब्राइल मेरे पास आए थे, उन्होंने मुझे बिशारत दी, तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए सजदा रेज़ हो गया। और दूसरी रिवायत जो है वो हज़रत अबू बकर से है, अबू दाऊद 2774। नबी सल्लम के पास जब कोई खुशी की खबर आती या आपको कोई बिशारत दी जाती तो आप अल्लाह का शुक्र करते हुए सजदे में गिरते। थोड़ा सा समझिएगा, देखिए जो इबादत जिस मौके पर अल्लाह के नबी ने कर दी वो है। बाज़ लोग कहते हैं मैंने शुक्राने के नफिल पढ़े, थोड़ा सा इसको समझ लें, शुक्र का सजदा है, नफिल नहीं है। ठीक है, आज के बाद जब भी कोई खुशी खुशी का मौका आ जाएगा तो नफिल की बजाय सजदा कीजिए, और दिन में 100 सजदे कीजिए। कितना अल्लाह को प्यारा लगता होगा वो बंदा कि एक तो नेमत मिली और हा हुर्रा और जश्न, नेमतों पे मुमन हम लोग यही कुछ कर रहे होते हैं ना, और दूसरा के क्या आप झुक जाएं? क्यों झुकेंगे आप? मैं कि अल्लाह ये सिर्फ और सिर्फ तेरी दिव्यता है, और इसे आजजी आती है, बंदा टूट जाता है, मिट्टी पे सर रख कर नाक की लकीरें रगड़ने लग जाए, इससे ज्यादा बंदा अल्लाह के आगे क्या बिछेगा। ठीक है, तो सजदे शुक्र। अब आपके जहन में सवाल होगा सजदे शुक्र में क्या पढ़े? जो मर्जी पढ़े, कोई फिकी इशू नहीं इसमें। आप फिर पूछेंगे कितनी दफ़ा पढ़ें, जितनी दफ़ा मर्जी पढ़ें। मुझे तो पता है कि जब शुक्र का सजदा होता है तो सिर्फ आंसू आते हैं, एक लफ्ज़ भी ना पढ़ें सजदा शुक्र में, सिर्फ रो रो के रब को बता दें कि तेरे सिवा ये खुशी की खबर कोई देने वाला नहीं था। और हदीस में आता है कि बंदा अल्लाह के करीब सबसे ज्यादा सजदे की हालत में, वैसे भी तो देखिए ना कोई नजर ही नहीं आ रहा होता। ठीक है, फिर आप देखिए कि वाक्या पढ़ा था एक जगह कि नॉन मुस्लिम थी, औरत थी कोई, उसको नहीं पता कि मुस्लिम क्या करते हैं, ये है वो है, उसका कोई काम रुका हुआ था और उसको लग रहा था इट्स इम्पॉसिबल। एकदम अचानक उसको खबर मिली कि वो काम हो गया, और वो इस बात को सुनकर एकदम अपनी जगह से उठती है, और वही ऑफ कोर्स जिसको हम सजदा कहते हैं, वो ज़मीन पे झुक गई। जो उसके पास उसकी फ्रेंड या कोई बैठा होगा उसने पूछा क्या किया तुमने भी, ये क्यों किया? कहती आई डोंट नो, बस मेरे अंदर जब ये खुशी की खबर गई तो मेरा एकदम बस नहीं चला और मैं इधर आ गई। उसने कहा तुम्हें पता है कि ये एक्शन तो मुसलमान करते हैं? कहती मेरे जहन में फ़ौरन एक लिंक जुड़ा कि देर इज़ समथिंग इन बिटवीन, यानी कोई रिलेशन होगा, कोई स्पिरिचुअलिटी है। रिसर्च शुरू की, इस्लाम को पढ़ा, किसी से मिली, मुसलमान हो गई। ये है वस्जुद वक्तरिब, फितरत की पुकार है। आप देखिए ये फितरत की पुकार है कि अल्लाह के आगे झुक जाए। चले अगला सजदा, सजदा तिलावत। इस पे भी हम बड़े फतवे देते लेते हैं, तो सजदा तिलावत क्या है, कैसे है, थोड़ा सा इसको समझिए। पहली बुखारी की रिवायत है 1072। हज़रत जैद बिन साबित कहते हैं कि मैंने नबी सल्लम के सामने सूरत नजम पढ़ी तो आपने इसमें सजदा नहीं किया। लेकिन दूसरी तरफ एक रिवायत मिलती है कि जिसमें अल्लाह के नबी सजदे की इस आयत पे सजदा करते थे। तो सजदा तिलावत क्या है? फ़र्ज़ नहीं है, सुन्नत है। ठीक है, अगर वाजिब होता तो अल्लाह के नबी कभी ना छोड़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितनी आयतें कुरान पाक में जिस पे सजदा है? 15। मैं सिर्फ बोल देती हूँ वरना तो आपको दे दूँ काम, आप खुद ढूंढें। क्या करना है? मैं बोलूँ कि आप ढूंढेंगे? यू कैन फाइंड आउट, इट्स नॉट हार्ड। ठीक है, ये मैं बता देती हूँ, 15। आप जगह खाली छोड़ दें, या आपने खुद पूछ के नहीं लिखना, आयतों को कुरान में से फाइंड आउट करके तो आपने ढूंढना है। इंशाल्लाह हर आयत का नंबर साथ लिखेंगे, सूरत के साथ, तो आपको समझ आ जाएगी। अब सवाल पैदा होता है कि फ़र्ज़ नमाज पढ़ते हुए आप वो आयतें पढ़ने लग गए जिसमें सजदा है। मसलन जैसे आप देखिए सूरह अलक है, आप कुरान में पढ़ रहे थे, अब क्या किया जाए? तो फ़र्ज़ नमाज के दौरान भी आप सजदा तिलावत कर सकते हैं। जैसे आपने रमज़ान की तरावी में तो हर साल ही देखा होगा कि जब सजदा तिलावत आता है तो इमाम साहब पहले बता देते हैं कि इस आयत में, तो फिर उनके साथ होगा। और इसकी दलील है बुखारी 766 और मुस्लिम 1299। नमाज के अलावा सजदा की आयत आई तो क्या फ़ौरन करेंगे? कोई ज़रूरी नहीं है, कर लें बहुत अच्छा। बस तो कहते हैं थोड़ा सा झुक जाएं, वजू करना इस सजदे के लिए शर्त नहीं है। इवन औरत पाक नहीं है, कहीं तिलावत चल रही थी, सुन रही है, अब आप सजदे की आयत में फ़ौरन जाइए, बच्चों की तरह सर रख दीजिए ज़मीन पे। ये है सजदे तिलावत। इसमें भी वही सारी बातें जो हम दूसरी बातें कहते हैं, क्या पढ़ें, कैसे, कितना पढ़ें, यानी कुछ भी पढ़ लें, सुभान रब्बी अल्लाह पढ़ें, लेकिन सिर्फ झुक जाना ही काफ़ी है। फिर कई लोग पूछते हैं इसके बाद कोई सलाम होगा, सलाम फेरेंगे, पहले अल्लाह अकबर करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। ये सिर्फ एक सजदा होता है जो आप किसी तरफ करें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्या सजदा कैसे करें? किबला रुख होना लाजमी है? तो हदीस सुन लीजिए, बुखारी 1075 इब्ने उमर से कहते हैं कि हमारी मौजूदगी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयते सजदा पढ़ते और सजदा करते, हम भी आपके साथ, लेकिन हजूम की वजह से इस तरह सजदा करते, रश था ना वहाँ, बहुत जगह कम थी तो जगह ना मिलती, तो बस हम इशारे से यूं कर लेते, यानी कि ज़मीन पे झुकने की जगह ही ना हर एक में होती, और हजूम में हर कोई ना तो बावजू होता है ना किबला रुख। बात वाज़ है? तो जहाँ भी हैं जिधर भी हैं, क्या सजदा तिलावत की दुआ है कोई? पढ़िए, सजदा वजहिया लिल्लज़ी खलकहू वशक्का समअहू वबसरहू बिहौलिही वकुव्वतिही। इसका तर्जमा आप खुद लिखिएगा, रिवायत का नंबर नोट कर लीजिए, अबू दाऊद 1414। आसान है, याद रहेगी, लेकिन यकीन करें कि जब बंदा इसको पढ़ता है ना तो वाकई अल्लाह ताला पे प्यार भी आने लगता है, उस पे मोहब्बत भी होती है। तो सजद वजही लिल्लज़ी खलकहू व शक्का समअहू व बसरहू बिहौलिही व कुव्वतिही। मेरा चेहरा उस ज़ात के लिए सजदा रेस है जिसने इसको पैदा किया, और अपनी ताकत और कुव्वत से इसके कान और इसकी आंख बनाई। ये कट्स है ना, शक शक्य होता है फाड़ना, तो ये बाकी देखा जाए तो कुछ कट्स ही है ना, जिनके अंदर किसी में आंखें लगा दी अल्लाह ने, किसी में जुबान लगा दी, तो अल्लाह ताला हमें इसको समझने की तौफीक अता फरमाए। अगला सजदा, सजदा सहव, कई लोग इसको क्या पढ़ते हैं? सहू, तो वाव पे जबर लगा लीजिए, सजदा सहव। सहव कहते हैं गलती को, साखून उसी से है, किसी चीज़ से गाफिल होने और दिल के उसकी जानिब मुतवज्जे होने को सहव कहते हैं। तो सजदा सहव इन दो सजदों को कहते हैं जो भूल कर नमाज में कमी बेशी कर देने की वजह से किए जाते हैं। और आपने फरमाया कि हर सहव के लिए दो सजदे हैं, यानी तिलावत का तो एक ही सजदा था, लेकिन इसके कितने सजदे हैं? दो सजदे हैं। इंशाल्लाह आप उसको करेंगे। और ये क्यों होते हैं? ये जो रिवायत थी ये इब्ने माजा की 1219 है। क्यों किया? ताकि जो गलती हो गई, को कमी बेशी हो गई नमाज में, अल्लाह ताला उसको कंपनसेट कर दे, उसको दूर कर दे, ठीक है, नक्स को दूर करने के लिए। अब ये कैसे किया जाए? देखिए, इसको अगर आपने सिंपल रखना है, मैं इसको अपनी ज़ुबान में बताती हूँ, और अगर आपने इसकी डिटेल पढ़नी है, आप जिस फिक को समझ रहे हैं जाके उसको पढ़ लीजिए, ऐसी चीज़ों पे ना झगड़े ना बहसें ना इख्तलाफात, बस इसकी रूह को समझ लीजिए कि बंदा अपनी गलती को खुद मेकअप कर रहा है, ठीक है, अल्लाह सुबहाना ताला ने रखा है। पहली तो बात है कि अगर आप जमात के साथ पढ़े और इमाम से गलती हो गई, तो इमाम साहब साहब जब करेंगे तो मुक्तदी भी साथ ही सजदा करेंगे। ये बुखारी 722 और मुस्लिम 930 है, ठीक है। फिर एक ही नमाज में एक से ज़्यादा गलतियां हो जाएं तो क्या सजदे भी ज़्यादा होंगे? हमारी तो गलतियों से भरी हुई नमाज है। एक ही दफ़ा यानी दो सजदे कर देंगे तो गलतियां दूर हो जाएंगी। सजदे साफ करते हुए कोई दुआ पढ़ेंगे अंदर, जिक्र अस्कार कुछ भी नहीं, कोई जिक्र कोई दुआ साबित नहीं है। और कब करेंगे? नंबर एक, भूल कर ज्यादा रकतें पढ़ ली तो करेंगे, बुखारी 1226 और मुस्लिम 91। और दूसरी इसकी वजह, रकतों में कोई कमी बेशी होगी, शक है, कम पढ़ी के ज्यादा पढ़ी तो करेंगे, मुस्लिम 1272। अच्छा, ज्यादा पढ़ी है तो ये कर लिया सजदा, तो वो मिलके एक एक्स्ट्रा नफिल हो जाएंगे दो। कम पढ़ी थी और शक है, तो पहले शक दूर कीजिए, एक रकत पढ़ लीजिए और एंड पे उसको कर लीजिए, तो इंशाल्लाह ये चीज़ भी उसमें काम देगी। फिर इसके बाद आप देखिए कि नफिल नमाजें, नफिल क्या है? कुरान में ये लफ्ज़ कहाँ आया, ज़रा सोचेंगे आप लोग? यसलूनका अनिल अनफाल, अनफाल क्या है? नफिल। अनफाल वहाँ क्या है? कौन सा माल? गनीमत, वॉर बूटी। इसको वॉर बूटी को अनफाल क्यों कहते हैं? मोमिन माल के लिए तो नहीं जाता, बात समझ गए? यानी ये एक एक्स्ट्रा चीज है, मोमिन की जंगो जिदाल का मकसद ना माले गनीमत ना किश्वर कुशाई, बात समझ गए? तो क्या पता चला कि ये एक एक्स्ट्रा चीज है। तो नफिल को अरबी में क्या कहते हैं, जरा लिखिएगा, नफिल नमाज की असल क्या है अरबी में? तत्वो, ता तोए वाव आइन। आपने कभी सऊदी अरब जाकर लफ्ज़ सुना है मुतवा? आप कहते हैं मुतवा क्या है? वॉलंटियर, शाबाश, जो अपनी खुशी से काम करे। कौन कौन मुतवे बनना चाहता है अल्लाह के रस्ते के? हम सबको अल्लाह बना ले, ठीक है? तो क्या पता चला कि मुतवा वो होता है जो नफली तौर पे, यानी उस पर किसी ने पाबंद नहीं किया, उसको फ़र्ज़ नहीं किया, लेकिन वो उस काम को करता है। तो नफिल ऐसी इतात और फरमा बरदारी जो फ़र्ज़ और वाजिब के अलावा बंदा अपने ऊपर खुद कर लेता है, और इसको छोड़ने पे गुनाह नहीं होता, करने पे अजर होता है। और इन नवाफिल की हिकमत क्या है? तो इब्ने माजा की रिवायत नोट कीजिए, 1426, नवाफिल को मुकम्मल तौर पर नहीं छोड़ना, क्योंकि क़यामत के दिन फ़राइज़ की कमी नवाफिल से पूरी की जाएगी, ठीक है? और वो जो रिवायत अभी मैंने ज़ुबानी बताई थी, वो नोट कर लीजिए, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रबिया बिन काब को ये हिदायत की थी, कहते हैं कि मैं अल्लाह के नबी के लिए पानी रखता था रात को, आपके इस्तंजे और वज़ू के लिए। एक रात में जब आपकी खिदमत कर रहा था, तो अल्लाह के नबी ने कहा, सल, मांगो। कभी बंदा खुश होता है ना, तो कहता है आप मांगे, आपको क्या दिया जाए? मुझसे अल्लाह के नबी ने कहा मांगो, तो मैंने कहा कि मुराफकत का फिल जन्ना, मैं आपका साथ चाहता हूँ। कहा कुछ और? कहा हुआ जाक, बस यही चाहिए और कुछ नहीं। दो तीन बार जब आपने यही कहा, तो उस पर अल्लाह के नबी ने कहा, फाइनी अला बिकसरत सुजूद, मेरी इस मामले में सजदों की कसरत के साथ मदद करो। ये मुस्लिम की रिवायत है 1094। क्या पता चला? ज़्यादा नफिल पढ़ने वाले को क़यामत के दिन नबी सल्लम की रिफाक़त मिलेगी इंशाल्लाह, जन्नत में वहाँ भी। अच्छा, नफिल कहाँ पढ़ने चाहिए ज़्यादा अमूमन? हाँ, घर में पढ़ने चाहिए, बुखारी की रिवायत 424। अच्छा, बैठ कर पढ़ें कि खड़े होकर पढ़ें? और बाज़ लोग तो जान के बैठ के ही पढ़ते हैं, खड़े बैठे लेटे किसी हाल में भी पढ़ सकते हैं, जैसी भी कैफियत होगी, ठीक है? नफिल पढ़ कर हम अल्लाह को क्या बताते हैं, आप अपने ऊपर लें। किसी को आपने कोई काम कहा, तो आप उसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ना, बस आप यहाँ आने से पहले अपनी बेटी को कहती हैं कि बेटा आज आप दाल चावल बना दीजिएगा। पता नहीं वो कौन से बेटी हैं जो बनाती होंगी, कहेंगी मामा वॉट है। चलिए, हम तो अपने हिसाब से मिसालें देंगे ना। अब आप क्या सोचेंगी कि चलो उसने कमो बेश कुछ दाल पकाई नहीं, बिगाड़ी तो होगी ना, दाल को बिगाड़ तो लगाया ही होगा ना, चलिए हो गई। अब आप घर जाती हैं, दाल भी बनाई, चावल भी बनाए, कचूमर भी बनाया, चटनी भी बनाई, आपको सबसे ज़्यादा खुशी किसकी होगी? एक्स्ट्रा चीज़ों की। मैं अपने लिए भी अक्सर ये जुमला कहती हूँ कि कुछ तो ऐसा कर लो कि जो अनएक्सपेक्टेड हो, और ख़ास तौर पे हम जैसों की, तो अल्लाह माफ़ करे, हम सब पे रहम करे, हर नेकी इश्तिहार में चली जाती है। लोग छुप छुप के पता नहीं क्या कुछ कर रहे होते हैं, किसी को नहीं पता, और फ्लायर्स पे नाम बोलने वालों के लगते हैं। इस चीज़ से मुझे इतना खौफ आता है, इतना खौफ आता है कि जिसकी कोई हद नहीं है, कि हमारी तो इश्तिहारी नेकी है, अल्लाह ना करे क़यामत के दिन हमारी तशहीर हो जाए। लेकिन छुप के निकियां करें, कुछ काम ऐसे ज़रूर करें हम आप सब। देखिए नमाज का टॉपिक ऐसे ही ना चला जाए, छुप के रातों में दिन में अल्लाह के साथ रोते हुए। आपको था कि हमारे कुछ काम ऐसे होंगे जो क़यामत के दिन कहाँ काम आएंगे? जब हमारी नेकियों में थोड़ी सी कमी होगी या कोई गुनाह हमें रोक रहा होगा, इखलास के साथ की हुई नेकियाँ गार का दरवाज़ा खोल देती हैं। याद आ गई ये हदीस, बुखारी मुस्लिम की रिवायत, तीन लोग गार में फंसे तो अपनी नेकियाँ याद की ना, कुछ नेकियाँ छुपा के रख दें, करें और छुपा दें। जैसे कुछ लोगों ने कुछ ना कुछ नकदी, कोई ऐसी चीज़ें छुपाई होती हैं किसी मुश्किल में काम आएंगी, सेविंग्स कह लें, कुछ नेकियों की सेविंग्स कीजिए। हर दिन सोचिए कि ये मेरी ऐसी नेकी है कि मैं किसी जगह फंस गई तो अल्लाह को पेश कर दूंगी। जैसे आपने नाम सुना होगा, अब तो दुनिया से चले गए, अब्दुल्ला बहावलपुरी साहब एक बहुत अच्छे उस्ताद थे, यूनिवर्सिटी के टीचर थे कह लीजिए, ज़ाहरा के प्रोफेसर थे, तो मास्टर्स तो किया ही होगा, धोती पहनकर अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाने जाते थे। तो मैंने उनका ये वाक्य सुना था कि सारी ज़िंदगी पढ़ने पढ़ाने में ही लगे रहे, और उनकी बातें ऐसी होती थी सीधी दिल में जाती थी, सीधी बात करते थे बिल्कुल। तो उनके बेटे को किसी दिन पुलिस ने किसी झूठे मुकदमे में पकड़ लिया, बच्चा जेल में चला गया। अब ये कहते हैं कि फिर मुझे उस दिन पहली दफ़ा समझ आया कि अब्दुल्ला तूने ना तो किसी थानेदार से कभी दोस्ती की, ना कोई मजिस्ट्रेट से, ना जेलर से कि जो तेरी इस वक्त मदद करे। तेरी तो सारी ज़िंदगी या तो मस्जिद में या तो यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाता है। फिर कहते हैं मैंने मुसल्ला पकड़ा और मैंने कहा अल्लाह आज बता मैं किधर जाऊँ, मेरा तेरे सिवा कोई नहीं है। ये है नफिल, कुछ करके रखे। हम इधर उधर भागते रहते हैं, उसका दर खटखटा, सुन लो ना, बता दो ना, मशवरा दे दो ना, सवाल का जवाब दे दो ना। मैं कहती हूँ नफिल वो चीज़ है कि जो आपकी मेरी इंशाल्लाह मुश्किलों में काम आएगी। जी
के सही टाइम
जिस वक्त आपका दिल टूटा हो, जिस वक्त आप
बाद लोग
दुखी हो,
कहते हैं इस टाइम नहीं पढ़ना, इस टाइम नहीं
देखिए
पढ़ना।
नफिल के लिए बात फिर समझिएगा, आज हमारा एक बहुत बड़ा डायलेमा है, हमने हर नमाज के नफिल साथ जोड़ दिए। आप देखिए जोहर 12 रकत है ना, और ईशा 17 रकत है। आज जाकर खोल कर किताब पढ़ लें और पीछे पढ़ के आए हैं कि फर्ज सिर्फ 4 ही हैं, ऐसे ही है ना। 3 जो आप एक वितर भी कर लीजिए, वितर भी चले गए, 2 रकत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पढ़ते थे, बाकी सब नफिल हैं। किसी दौर में बुजुर्गान जिन्होंने वाकई ईमान और तकवा की जिंदगियां गुजारी, उन्होंने ये नफिल पढ़े। आप जितने मर्जी पढ़ें, किसी को बताने की क्या
और
जरूरत है,
फुर्सत मिले
और
पढ़ने की।
रोज हर दिन एक ही वक्त पे पढ़ने की क्या जरूरत है, ऐसे ही है ना। अब एक बंदा 1 घंटा वॉलंटियर करता है हफ्ते में, एक सारा महीना ही वॉलंटियर करता है, लेकिन ये बातें दूसरों को नहीं बतानी चाहिए। आज हमारी नमाज की ये कैफियत जो 17 रकतों की है ना, ये ज्यादा से ज्यादा ये है कि हमारे असलाफ और माजी में जो बुजुर्ग थे, जो दीनी आलिम थे, उन्होंने अपनी जात के ऊपर इसको रखा होगा कि चले भाई मैं पढ़ सकता तो मैं पढ़ लूँ, मैं जोहर से पहले भी पढ़ लूँ, बाद में भी पढ़ लूँ, सिर्फ नफलों की बात कर रही हूँ। आज हम लोगों ने उसको ही वजह निजा बना दिया, नफिल के लिए कोई ख़ास मुकर्रर नहीं है। हाँ वो वक्त जिस वक्त सूरज बिल्कुल ऊपर हो या डूब रहा हो, 2 वक्तों के अलावा आप नफिल जब मर्जी पढ़े, गिनना नहीं चाहिए। मैं यहाँ फिर एक आपसे शेयरिंग कर सकती हूँ, एक सिस्टर आई और कहने लगी कि मेरे ऊपर बहुत सारे नफिल हैं, मैं क्या करूँ। मैंने कहा नफिल तो फ़र्ज़ नहीं होते। कहती नहीं मैंने मन्नत मानी हुई है। मैंने कहा क्या की है, कितने हैं? कहती कई 100 हैं, हज़ारों में थे। मैंने कहा वाह हाउ इज़ इट पॉसिबल? कहती मेरी आदत में बहुत घबराहट है, बच्चा नहीं आया रात को घर, देर हो गई, मैं घबराए कुछ हो गया होगा, ये होगा, अल्लाह बच्चा घर आ जाए 100 नफिल पढ़ूंगी। अच्छा जी, अब 100 में से बच्चे के आने पे 2 नहीं तो 10 पढ़ लेंगी, बाकी 90 किधर गए? दूसरा ही दिन गुजरा और उस दिन पता चला कि जी मियाँ साहब फ़ोन नहीं उठा रहे, अल्लाह खैर करे अल्लाह करे। कहती मैंने इस तरह घबरा घबरा के 100 100 के हिसाब से कई 1000 नफिल अपने ऊपर रख लिए। ये नहीं करना चाहिए, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। 2 नफिल जिसमें आपका दिल हाजिर हो, खुशू और खुदू हो, वो काफ़ी है। ठीक है, फिर इसी तरह आप देखिए कि नफिल नमाजों के कुछ नाम बोल देती हूँ जो आप सब जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नंबर 1 चाश्त की नमाज, ठीक है, इसी नमाज को मुख्तलिफ वक्तों पे पढ़े ना तो इसके मुख्तलिफ नाम हो जाते हैं। मसलन आप देखिए कि सूरज निकलते ही फ़ौरन, सनराइज़ के फ़ौरन साथ ही अगर ये पढ़ेंगे ना तो इसको इशराक बोलते हैं। इशराक पढ़ेंगे ना तो दो नफिल हैं, ओनली टू नफिल, 10 बजे के करीब का जब पूरा सूरज खिला है उस वक़्त पढ़ेंगे तो इसको चाश्त कहते हैं। और चाश्त के वक्त अगर पढ़ेंगे तो दो दो नफिल करके चार पढ़ लीजिएगा। इसी को सलातुल अव्वाबीन भी कहते हैं, इशराक भी कहते हैं, दोहा के नफिल भी कहते हैं। और इसकी फजीलत सुन लीजिए, अल्लाह के नबी के बारे में हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि मेरे खलील यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हर महीने 3 रोज़े रखने और चाश्त की नमाज 2 रकतें और सोने से पहले 3 वितर पढ़ने की वसीयत की थी। ये बुखारी की रिवायत है, 1981 नंबर की है, ठीक है। इसी तरह अबू ज़र से एक बहुत ही मारूफ रिवायत आपने बीसियों बार सुनी होगी, सही मुस्लिम 1671, आदमी जब सुबह होते हैं ना हर जोड़ पर एक सदका वाजिब होता है। कितने जोड़े हैं हमारे, यानी जॉइंट्स जितने भी हैं हमारे, ठीक है। और एक मरतबा सुबहान अल्लाह कहना सदका है, एक दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह कहना सदका है, एक दफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह कहना ये भी सदका है, एक दफ़ा अल्लाह अकबर कहना भी सदका है, और अच्छी बात का हुक्म करना भी सदका है, और बुरी बात से रोकना भी सदका है, और चाश्त के 2 रकत नमाज पढ़ लेना इन सारे कामों से किफ़ायत कर जाता है। तो 2 नफिल, ये मुस्लिम की रिवायत 1671। आज कितने लोग हैं जो नीज प्रॉब्लम का शिकार हैं, घुटनों के दर्द है ना, आप अल्लाह से कहें, जॉइंट्स का प्रॉब्लम है, कई लोगों का हाथ नहीं हिलता, नसें दबी होती हैं, ये सब कुछ है। पूरे यकीन के साथ आप ये काम कीजिए, जिन डॉक्टरों की दुकानों पे या अपॉइंटमेंट्स के चक्कर में घंटों बैठ के हम टाइम वेस्ट करते हैं, अगर हम चाश्त की नमाज इस सोच से भी पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। चाश्त की नमाज 2 पढ़ सकते हैं, इसकी दलील बुखारी 1981, 4 रकत पढ़ सकते हैं 1663 मुस्लिम, और 8 रकतें भी पढ़ सकते हैं बुखारी 357, ठीक है। और चाश्त का मजमूई वक्त क्या है, फिर फजर से जहर के इन बिटवीन कभी भी, ये भी सही मुस्लिम 1745 है। चलिए नफिल नमाज की एक मशहूर नमाज तहज्जुद, और जिसका दूसरा नाम तरावी भी है, इसकी कोशिश करें। देखिए तहज्जुद अमूमी 2-4 बातें कह सकती हूँ, इस पर आपने पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है, और आप लोग अगर ये बेस्ट टाइम है अपने नॉलेज को पुख्ता करना है तो आप एक दफ़ा किताबुस सलात को दोबारा दोहरा लीजिए, उसकी हेडिंग सुन लें या पढ़ लें। देखिए बार बार पढ़ेंगे ना तो याद हो जाएंगे मसले, हम बुक में पढ़ते हैं हमें याद रहता है, बाद में भूल जाता है, ठीक है। तो तहज्जुद की नमाज को कह लीजिए कि रात को सोकर उठ के पढ़ने वाली नमाज है, और फ़र्ज़ नमाजों के बाद आप फ़र्ज़ पूरे करके नफलों पे आए हैं तो सबसे अफसल नमाज तहज्जुद की नमाज है, सही मुस्लिम 1162 है। अल्लाह के नबी ने कहा कि गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया भी है और अल्लाह के कुर्ब का ज़रिया भी है और बुराइयों को दूर करने का रास्ता भी है, और नेक लोगों का यही तरीका था, ये तिर्मिज़ी 3549 है। कितनी रकतें हैं इसकी, ज़्यादा से ज़्यादा 11, 11, जिसमें से अगर आप 3 वितर निकाल लें ना एक साइड पे तो पीछे 8 रहते हैं। वही नमाज जो आम दिनों में हम तहज्जुद के नाम पे पढ़ते हैं, रमज़ान में वो तरावी बन जाती है। फ़र्क क्या है, आम दिनों में फजर से पहले पढ़ते हैं रात को मिडनाइट में, यही बेहतरीन वक्त है ना, चूँकि वो वक्त खाने पीने का और पराठे बनाने का और लस्सी बनाने का हो गया हमारा रमज़ान में, तो क्या किया कि रमज़ान में उसको ईशा में ले जाएं। तो 3 नाम है एक इबादत के, नंबर 1 तहज्जुद, तरावी, क़ियामुल्लैल, इसको सामने रख लीजिएगा। और दो दो करके पढ़ी जाती है, सही मुस्लिम की रिवायत है 736 नंबर, और जिस वक़्त भी पढ़ लें बेहतर है, बेहतरीन वक्त इसका आखिरी हिस्सा रात का, सही मुस्लिम 755। अब आपको डर है कि आप सुबह नहीं उठ सकेंगे, होता है ना डर, सोने से पहले पढ़ लें, जैसे बच्चों को यूज़ टू करते हैं ना, छोटी छोटी चीज़ों पे ट्रेनिंग्स देते हैं, इसी तरह इसको भी ट्रेनिंग पे दे दीजिएगा तो इंशाल्लाह ये चीज़ काफ़ी होगी। और 50 आयतों की तिलावत के बराबर सजदा करना आपसे साबित है, यानी तवील सजदा कितना आप करते थे तहज्जुद में कि अमूमन इतनी देर में 50 आयतें पढ़ी जा सकती हैं, ये बुखारी की रिवायत है 1123। आपने हज़रत आयशा की वो रिवायत सुनी हुई है जो अल्लाह के नबी को रात को क्याम में और सजदे में जानते हुए देख रही हैं, कहने लगी आप सारी नहीं उठा रहे, हत्ता कि मैंने समझा कि वो बात हो गई, यानी अल्लाह के नबी फौत हो गए। तवील सजदे करें, गिने नहीं, हर वक्त हेड काउंट नहीं अच्छा होता, हाय रेफरेंस क्या, हाय नंबर क्या, हाय ये क्या वो क्या, उसको साइड पे करके ये देखिए कि अल्लाह ने इसमें आपके लिए क्या रखा हुआ है। ठीक है, तो जो भी पढ़े गिनती में ना पढ़े, जो पढ़ते हैं उसको बेहतरीन तरीके से पढ़े। क्याम में कुरान नहीं आता, शुरू कर दीजिए, पकड़ के पढ़ लीजिए। आज रात से भी अगर नियत करके तहज्जुद के दो नफिल शुरू करें, सूरह फातिहा से बकरा शुरू कर ले, दो रुकू पढ़ के ख़त्म कर दिए ना, कल की तहज्जुद में तीसरे रुकू से शुरू कर ले, एक तहज्जुद का कुरान बना ले। कोई जमा तफरीक गिनती नहीं, हम हर वक्त इन उलझनों में पड़े रहते हैं क्या कैसे जायज़ गुना सवाब है, नेकी बल्कि हमारी गुनाहों में पड़ जाती है, इसलिए ऐसी चीज़ों से रुकने की ज़रूरत है।